हर एक आदमी सुख के लिए काम करता है, पर सुखी कितने हैं? गुरु नानक जी ने भ्रमण किया देश विदेश का, वापस आए तो लोग बैठे, लोगों ने कहा कि आपने बड़े बड़े दूर तक लोगों के अंदर जाके समाचार जाना है, सबको मिले हो, तो संसार कैसे चल रहा है? उन्होंने कहा जी संसार तो हर एक आदमी सुख के लिए आनंद के लिए काम करता है। उन्होंने पूछा कि हर एक आदमी आनंद के लिए काम करता है, सुख के लिए काम करता है, तो सारे संसार में सुख के लिए काम करने वाले सुखी कितने हैं? उनका नानक दुखिया सब संसार, क्योंकि सारे दुखी हैं। लोगों ने कहा आश्चर्य की बात है कि हर एक आदमी सुख चाहता है, सुख के लिए काम करता है, सुखी कोई भी नहीं, क्योंकि कोई सुखी है भी, सोई सुखी जो नाम आधार, जो नाम के आश्रय हैं वो तो सुखी हैं, बाकी सब दुखी हैं। मन में नाम महामधुर खिंचे नाम सुरेख, कर्म गति वहाँ क्या करे इसमें मीन नहीं मेघ। अगर तेरे मन में राम नाम की रेखा खिंच जाए तो तेरे को बड़ी शांति, बड़ी शक्ति, बड़ा सहारा मिल जाए। सर्व सहारा नाम का, माना जिसने देख, लिया भरोसा राम का, उसके सुधरे लेख। लेख भी सुधर जाते हैं, आदमी की गति भी होती है, वो भी आदमी को आशीर्वाद देने वाली होती है। कितना दुख हो, कितना संकट हो, हानि हो, लाभ हो, कैसे भी हो, भगवान की शक्ति उसके साथ उसको सहारा देने के लिए रहती है। यही उन्होंने कहा गुरु नानक जी ने सुख है। पर प्रश्न ये होता है कि सारा संसार सुख के लिए काम करता है तो आदमी दुखी क्यों है? महाराज ने कहा इसलिए दुखी है कि जहाँ सुख है उसके लिए तो करता नहीं है, जहाँ सुख नहीं है उसके लिए करता है, जहाँ सुख है उसको समझता नहीं है, और जो थोड़ा रहने वाला सुख है उसको समझता है। तो हमने आपने पढ़ा है महाराज ने, वही परम सुख कंद है, वह आनंद निधान अनादि शुद्ध अनंत जो चेतना रूप महान। एक परमेश्वर के नाम में सुख है, जो सुख जो हमेशा रहने वाला है। दो किस्म के सुख हैं, एक सुख तो ऐसा है जो मालूम होता है लेकिन वो नाश होने वाला है, वो बरकरार रहने वाला नहीं है, वो तो दिखावे का सुख है और वो क्षण भंगुर है। लेकिन जो परमात्मा के नाम का सुख है वो त्रिकाल में रहने वाला, हमेशा रहने वाला है। उसके लिए आदमी को कोई समा या कोई मौसम या कोई बात नहीं होती है, वो तो परमेश्वर के नाम के सिमरण करने वाले को शक्ति, शांति, आशीर्वाद मिलता है। तो यही महाराज ने कहा है कि वही परम सुख कंद है, वही आनंद निदान, वही आनंद के निदान करने वाला है, देने वाला है। पर लोग किस सुख में फंसे हुए हैं? महाराज ने कहा है कि विषय जन जो सुख सभी, विषय जन जो सुख भी क्षण भंगर हो जाए, इंद्रिय रस का सब सुख होकर फिर निमसाए। ये जो भोग विलास में, विषय विकारों में, धन में, ये तीन प्रकार की जो आदमी को मस्ती होती है, एक तो दाम की मस्ती होती है, एक चाम की मस्ती होती है, एक नाम की मस्ती होती है। दाम की मस्ती और चाम की मस्ती तो नाश होने वाली है, जैसे विषय जन सुख कहे हैं, और नाम की मस्ती बरकरार रहने वाली है। तो महाराज ने कहा है कि सुख तो इनमें भी है, लेकिन ये सुख कौन सा है? क्षण भंगुर है, ये थोड़े दिनों का रहने वाला है और फिर भूल जाता है, फिर दोबारा चस्का पड़ता है, दोबारा चस्का पड़ता है। इसलिए दुनिया तो इस क्षण भंगुर सुख में फंसी हुई है। विषय जन जो सुख सभी क्षण भंगुर हो जाए, क्षण भंगुर है, इंद्रिय रस का सब सुख होकर फिर बिरसाए। ये इंद्रियों का रस जो है ये होता है फिर भूल जाता है, होता है फिर भूल जाता है। कहा है संतों ने कि तू समझता है कि मैं भोग रहा हूँ, अपने सुख भोग रहा हूँ, मैं अपने जो विकार है उनको भोग रहा हूँ, लेकिन तेरे को ये पता नहीं है कि सुख तेरे को भोग रहे हैं, तू नहीं भोग रहा है, वो सुख तेरे को भोग रहे हैं। तू समझता है कि मैं इनको भोग रहा हूँ, लेकिन वो तेरे को भोग रहे हैं, तेरे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो महाराज ने कहा है कि ये समझ ले कि ये सुख जो तू भोगता है तो क्षण भंगुर है, ये नाश होने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है, ये तो और कामना बढ़ाने वाला है, तृष्णा बढ़ाने वाला है और पूर्ति होने वाला नहीं है। इसलिए ये जो भोग हैं, ये जो जो हैं, ये भोग नहीं रोग हैं। ये जो तू समझता है कि इसमें भोग हैं, इसमें हैं, ये रोग हैं, पर पता तेरे को जब चलेगा, जब तेरे को ठोकर लगेगी। संतों ने कहा है कि मछली तब वापस आती है जब पत्थर से ठोकर खाती है, वैसे नहीं वापस आती है। आदमी को जब कभी परमेश्वर के नाम का सहारा मिलता है, संत का आशीर्वाद मिलता है, तब मुड़ता है, वैसे नहीं मुड़ता है, वैसे नहीं समझता है कि ये भोग तो रोग हैं, ये तो रोग हैं, चार दिन की चांदनी है, ये तो रोग की बात है। भोग रोग के योग हैं, दे संयोग वियोग नीर रसों सर्व ही हास रमण देशो। ये जितने सारे हैं ये भोग जो हैं, ये महाराज ने कहा है भोग रोग के योग हैं, ये तो रोग के योग हैं, भोग रोग को देने वाले हैं, ये तेरे को आखिर में रोग देने वाले हैं। गीता में हम लोगों ने पढ़ा है, अर्जुन ने पूछा है कि सुख कितने प्रकार का है, क्योंकि हर एक आदमी सुखी रहना चाहता है। उनका तीन प्रकार का सुख है, एक तो सुख सात्विक है जो पहले कड़वा मालूम होता है और बाद में फिर वो अमृत के समान होता है। दूसरा सुख राजस है जो पहले मीठा मालूम होता है और बाद में वो कड़वा होता है। तीसरा तामस सुख है, ना वो पहले सुख अमृत होता है ना पीछे कड़वा होता है। तो पहला सुख कौन सा है? सात्विक, जो पहले कड़वा मालूम होता है बाद में अमृत समान होता है, जैसे तप करना, नाम जपना, प्रातःकाल जागना, ये पहले तो कड़वा मालूम, तो मुश्किल मालूम होता है, कौन प्रातःकाल जागे, कौन सिमरण करे, कौन स्वाध्याय करे, कौन संयम रखे, कौन तप करे, कठिन मालूम होता है। बच्चे पढ़ते हैं, कौन तपस्या करे, कौन मेहनत करे, पहले तो कड़वा मालूम होता है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है, ये सात्विक है। ये संतों का सुख है जो पहले तपस्या करते हैं बाद में सुख भोगते हैं, पहले बच्चे मेहनत करते हैं बाद में पर यश प्राप्त करते हैं, ये सुख तो सात्विक है। राजस्व सुख कौन सा है? जो पहले मीठा मालूम होता है और बाद में जाके तकलीफ देता है, विषय विकारों का सुख, भोग विलास का सुख, धन का दम का सुख जो है, पहले तो ये चमकता नजर आता है पर आखिर में जाके कष्ट देता है, पछतावा होता है, अफसोस होता है, ये राजस्व सुख है। तामस सुख कौन सा है? ये जुआ खेलना, ये आदमी का प्रमाद वगैरह, ये निंदा चुगली, ये सब सुख हैं, सुख तो हैं लेकिन तामस सुख हैं। कोई उठता है बालक 8-9 बजे और जब सूरज चढ़ता तो कहता है मेरी 4 बजे बरामदे के नीचे कर लेना, धूप हट जाए, 10 बजे उठूंगा। पूछे तेरे को क्या सुख है? कहनेगा असली सुख तो 8 बजे के बाद मालूम होता है, पहले तो नींद गाड़ी आती थी, असली सुख तो नींद का पता लगता है जब 10 बज जाते हैं। तो सुख तो वो भी है पर वो तामस सुख है। महाराज ने कहा है कि सुख तो सारे चाहते हैं, सुख भोगते हैं, पर सुख तो परमेश्वर के नाम में है, उसमें कोई जाता नहीं है। इस सुख को करते हैं जो भोग रोग के योग हैं, दे संयोग वियोग नीर रसो सर्व ही हास रमण देशोग। ये मिलाने और बिछड़ने वाले और पल भर के सुख हैं, जिसको दुनिया पकड़े बैठी है। जो प्रभु के नाम का सुख है वो विरले आदमी को मिलता है, भाग्यशाली को मिलता है। तभी मैंने पहले ही कहा है कि जब भी जिंदगी में तेरे को सत्संग मिले, संत मिले, जब भी तेरे को शुभ कर्म करने का मौका मिले, जब शुभ कर्म सोचने का मौका मिले, तो यही समझना है कि महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बताना, पुण्य जागे हैं, किस्मत जागी है, तेरे को रास्ता मिला है। ये कह के जब आदमी किसी शुभ कर्म में जाए तो नमस्कार करके कहे भगवान मैं तो इस काबिल नहीं था जितनी तेरी मेहरबानी है, इतने जंजीरों में फंसे हुए जीव को भी तुमने अमृत पीने का मौका दिया है, तेरा करोड़ों बार धन्यवाद है। ये कहते ही आदमी को सुख मिलता है, शांति मिलती है, ये अर्थगति से पैदा हो। जो कुसंगति होती है वो संशय पैदा करती है और संशय तर्क वितर्क से पैदा होता है। इस वास्ते बुरी संगति से बच के रहे और वाद विवाद से बच के रहे तो विश्वास जो है वो हिलता नहीं है, पक्का रहता है। जब आदमी ये समझ आए कि विश्वास सबसे बड़ा शत्रु है तब आदमी उससे बचने के उपाय भी करता है। इस वास्ते महाराज का कहना है कि संशय बड़ा ही रुकावट डालने वाला है। राम नाम को लाभ कर फिर करे और अधिक निश्चय कर ले, विश्वास कर ले और नाम के ऊपर पक्का निश्चय कर ले, जैसे परमेश्वर का आशीर्वाद हो वैसे ही आदमी चलता जाए, अपना काम करे, मेहनत करे और परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करे। तो इसलिए विश्वास पर बहुत जोर दिया है महाराज ने और सब महापुरुषों ने कहा है कि तेरे को विश्वास होना चाहिए परमेश्वर की कृपा के ऊपर, शक्ति के ऊपर, आशीर्वाद के ऊपर। ये विश्वास का ही ऐसा एक सहारा है, दुख में भी, सुख में भी, हानि में भी, लाभ में भी, यश में भी, अपयश में भी, ये विश्वास ही आदमी के अच्छे दिन शांति के साथ गुजारने में आशीर्वाद देता है। तो परमेश्वर करे परमेश्वर के नाम का विश्वास जो है वो बना रहे, नाम की महिमा होती रहे और नाम का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। लोग साधना करते हैं, अगर हमारी वाणी तीखी है, हमारी वाणी बोली ठोली मारने की है, हमारी वाणी झूठी है, हमारी वाणी दूसरे को दुख देने वाली है तो उसकी साधना करना। शरीर आलसी है, प्रमादी है, सेवा नहीं करता है, उसकी साधना करना। वचन जो वाणी है नाम का सिमरण नहीं करती, उसकी साधना करना। कानों में लोगों की निंदा चुगली सुनने की आदत है, उसकी साधना करना। हाथों से सेवा करना, परोपकार करना, दान देना और पैरों से शुभ कर्म में जाना, ये सब साधना कहते हैं इसको। तो वचन की साधना हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, महाराज ने कहा है कि अभिमानी के वचन में बसते वैर विरोध, आत्मश्लाघा आदि कर द्वेष कलह अति क्रोध। जो अहंकारी आदमी है, किसी को धन का अहंकार होता है, किसी को हुकूमत का अहंकार होता है, किसी को जन का अहंकार होता है, तो अहंकार तो सब बुरे हैं। तो महाराज ने कहा है कि अभिमानी के वचन में बसते वैर विरोध। जो अहंकारी आदमी होती है उसकी निशानी ये है कि उसके वचन जो होते हैं बड़े कठिन होते हैं, करड़े होते हैं, वैर विरोध वाले होते हैं, अहंकार से भरे होते हैं। द्वेष कलह अति क्रोध, द्वेष होता है, क्रोध वाला होता है। अभिमानी फूला फिरे, अहंकार का भार भारी कंधों पर लिए, लांग विनय की कार। जो नम्रता है, जो मिठास है, जो झुकना है, उसकी हद को वो लांग जाता है। और अभिमानी फूला फिरे अहंकार का भार, अहंकार का भार लेके फूला फिरता है, अपने आप को बड़ा मानता है, अपने आप को शक्तिशाली हुकूमत वाला मानता है। इसलिए कहा है कि वो भारी कंधों पर लिए लंग विनय की कार, अपने कंधों पर अभिमान का बोझ लेके फिरता है और विनय की हद को लंग जाता है। अति मानी जन अधम है, अति निंदक अति नीच, मिथ्या मान बढ़ाई के पड़ा कीच के बीच। उसको ये पता नहीं है कि तू मान बढ़ाई के और निंदा के कीचड़ में फंसा हुआ है, सारा जिस्म तो कीचड़ में अपना भिगो रहा है। तू तो अपने आप को बड़ा मानता है, लेकिन ये समझ ले कि भगवान के दरबार में अतिमानी जन अधम है। परमेश्वर के दरबार में जो बड़ा अहंकारी है वो बहुत अधम माना जाता है, और अति निंदक अति नीच, जो निंदा करने वाला है वो अति नीच माना जाता है। क्यों? कि मिथ्या मान बढ़ाई के पड़ा कीच के बीच, मिथ्या मान बढ़ाई में पड़ा है। चार दिन की चांदनी है, साथ किसी ने जाना नहीं। पैसे का अहंकार काहे का, धन का अहंकार काहे का, कोई अहंकार वाली बात तो है नहीं, लेकिन वो मिथ्या मान बढ़ाई के पड़ा कीच के बीच, वो मिथ्या मान बढ़ाई के कीचड़ में फंसा हुआ है। उसकी निशानियां क्या हैं? तुच्छ गिने जन अन्य को निज गुण का कर गान, सभ्य जनों में ऐठ से पाए घोर अपमान। दूसरे आदमी को हमेशा तुच्छ गिनेगा, किसी काम का नहीं है ये, किसी काम का नहीं है। दूसरे आदमी की बड़ाई सुनते उसके मन में कोई अच्छाई नहीं आती है। तुच्छ गिने जन अन्य को, हमेशा दूसरे को छोटा गिनने वाला है। निज गुण का कर मान, अपनी मान बढ़ाई करने वाला कि मेरे में ये गुण है, वो कुछ नहीं है। तो महाराज ने कहता है कि सभ्य जनों में ऐठ से पाए घोर अपमान। जो अच्छे लोग हैं, संत लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, जो बड़े धर्मात्मा लोग हैं, उनमें उसकी बेइज्जती होती है, उसमें उसका मान नहीं होता है। किसका? जो दूसरे को छोटा समझे, अपने आप को बड़ा समझे। झुके न गुरुजन सुजन पे, झुके न गुरुजन सुजन पे, मात पिता को मान, देवे नहीं घमंड कर भरा विषम अभिमान। माता पिता गुरु ज्ञानी महापुरुष बुजुर्ग उसके आगे झुके नहीं, और वो झुके नहीं भरा विषम अभिमान, वो अभिमान के विष में जहर में भरा हुआ होता है। इसलिए महाराज ने कहा है, देवे नहीं घमंड कर भरा विषम अभिमान, वो अभिमान के विष में भरा हुआ है, वो जहरी आदमी समझना चाहिए। अपने आप को तो बड़ा समझता है, लेकिन समझो कि वो ठीक नहीं है। साधो तजिए मान को, कर साधन सुखकार, हित मित सुमृद वचन को बोलिए साथ प्यार। अगर तू चाहता है कि दूसरा आदमी तेरे वश में हो, अगर तू चाहता है कि दूसरा आदमी तेरे को प्यार करे, अगर तू चाहता है कि तेरा कोई इज्जत करे मान करे, तो एक बात समझ ले, साधो तजिए मान को, कर साधन सुखकार, अहंकार छोड़ के सेवा कर ले, खिदमत कर ले। जितनी भी खिदमत हो सके तू कर ले, और फिर ये हितमित सुमृद वचन को बोलिए साथ प्यार। बड़े मीठे वचन से, प्यारे वचन से अगले को वश में करना होता है। जैसे मैंने पीछे भी सुनाया था कि तुलसीदास को जो भी मिलता उसको वश में कर लेते थे, जो भी मिलता उसको वश में कर लेते थे। तो तुलसीदास जी को किसी ने पूछा कि तेरे पास कोई जादू है? उन्होंने कहा हाँ जादू है, जो दूसरे को वश में कर लेते हो। कहने हाँ जादू है, जिसने सीखना वो भी सीख ले। तुलसी मीठे वचन थे सुख उपजे चहूँ और, वशीकरण ये मंत्र है तज दे वचन कठोर। तुलसीदास ने कहा तो आज से मन में संकल्प कर ले कि बोली ठोली मारने का, तीखा वचन बोलने का, कड़वा बोलन बोचने का, दूसरे को दुख देने वाला वचन आज से नहीं बोलना है। अगर तू ये संकल्प कर लेगा तो तेरे को दूसरे को वशीकरण ये मंत्र है तज दे वचन, तू दूसरे को वश में कर ले। बोली ठोली मारते रहना, कह के वचन कठोर खरड़ नहीं छोड़िए। कठोर वचन कह के, तीखा वचन कह के, बोली ठोली वाला वचन कह के जख्म को नहीं छेड़ना चाहिए। अगला फिर अपने आपको प्यार नहीं करता है, लेकिन महाराज ने कहा है कि साधो तजिए मान को, कर साधन सुखकार, हितमित सुमृद वचन को बोलिए साथ प्यार। मीठा वचन, प्यारा वचन, अगले को सुख देने वाला, तीन चीजें कही हैं। ये वचन बोलिए प्यार के साथ बोलिए, क्यों? इसमें मूल कुछ लगता नहीं, कीमत कुछ खर्च नहीं होती है, इसमें लगता कुछ नहीं, फल बहुत होता है। प्रिय वचन से पूजिए, सुजन समागत जो, हींग लगे ना फटकड़ी रंग भी चोखा। लगता कुछ है नहीं, कुछ कीमत नहीं देनी पड़ती है, लेकिन रंग बहुत ज्यादा पड़ता है। कैसे? प्रिय वचन से पूजिए, सुजन समागत जो, बहुत प्यारे वचन से अगले की पूजा करना, शब्दों से पूजा करना। क्योंकि जो आदमी आता है वो आदमी आपकी आंखों के प्यार को भी देखता है। आपके मुख के चेहरे को भी देखता है और फिर आपके आदर प्यार के देखता है, शब्दों को देखता है। अगर आपने प्यारे शब्द नहीं कहे, आंखों में प्रेम नहीं लाए, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाई, तो फिर अगला जो है आ तो गया है लेकिन फिर नहीं आएगा। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सुने, तुलसी वहां ना जाइए चाहे कंचन बरसे में। जिसके घर में जाओ आवत ही हर्षे नहीं, उसका हृदय खेल ना जाए और आंखें प्यार से भर ना जाए, चेहरा खेल ना जाए, तो तुलसी वहां ना जाइए चाहे कंचन बरसे में। वहां क्या जाके करना है, जहां सोना भी बरसता हो तो कोई बात नहीं है। इसलिए कहा है कि हींग लगे ना फटकड़ी रंग भी चोखा, लगता कुछ नहीं है, बड़े प्यार से मोहब्बत से आदर से मान से उसको कहना कि बड़े शब्दों से उसकी पूजा करना। स्वागत आदर मान से अभ्यागमन समुत्थान, महाराज शुभ आइए वंदन आसन दान। जब तेरे घर में आए तो खड़ा हो जा, खड़ा होके उसको दरवाजे से लेके बिठा, उसको आसन दे, चारपाई दे, कुर्सी दे और बिठा के हाथ जोड़ के कहो, क्या कहो कि तूने बड़ी आज तो बड़ी मेहरबानी की है जो आप मिले हो, आपका बड़ा प्यार है मोहब्बत है। सहारा सब किसी को चाहिए और सहारे का प्रबंध सब जगह होता है, धरती पर भी होता है, आसमान में भी होता है। हवाई जहाज आसमान में चलता है, वहाँ पर खतरा होने पर हवाई जहाज के अंदर छाते रखे होते हैं, उन छातों को लेके कोई आदमी जान बचा सकता है। धरती में जहाज समुद्र में चलते हैं, वहाँ खतरा होने पर उससे निकलने के थोड़े थोड़े उपाय भी रखे गए हैं। जब जहाज कोई बड़े तूफान में गिर जाता है, बड़ी मुश्किल में आ जाता है, तो उसकी मदद के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ भी आ जाती है। इसी प्रकार संसार में रहते हुए विघ्न तो आते ही हैं, रुकावटें आती हैं, उनके लिए सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर को अपने अंग संग समझना चाहिए, परमेश्वर को अपने पास समझना चाहिए। यही एक छोटे छोटे मुसीबतों को बचाने का सहारा है। जब कभी ज़्यादा तूफान आ जाता है, ज़्यादा घिर जाता है, ज़्यादा मुसीबत आ जाती है, तो महापुरुष जो होते हैं वो पूरी शक्ति के साथ आके बचा लेते हैं। इस वास्ते जागृति के लिए, नाम की जागृति के लिए, सबसे पहला तो परमेश्वर को पास समझना और संत का सच्चा और पक्का सहारा मानना, ये पहली जागृति का चिन्ह है। दूसरा ये कहा है कि अपने भीतर राम नाम जागृत करना चाहिए, जैसे भी हो सके नाम का सिमरन करता रहे, ऐसा प्रतीत हो कि चलते फिरते उठते बैठते लेटे हुए काम करते हुए भी जब ध्यान किया जाए, राम नाम उसी वक्त मालूम हो कि राम नाम की मस्ती मेरे को आ रही है। यहाँ तक के सोते हुए भी, सपने में भी उसको राम नाम की गूंज नजर आए, आंख खुले तो समय भी उसको ऐसे ही मालूम हो कि राम नाम मेरे भीतर चलता हुआ प्रतीत होता है। जिस वासक को ये अवस्था प्राप्त हो जाती है, उसको समझ लेना चाहिए कि राम नाम का महामंत्र उसकी आत्मा में बसता चला जा रहा है और उसकी आत्मा की सत्ता जगती चली जा रही है और उसका मंत्र जो है वो सिद्ध हो चुका है। मंत्र तो मंत्र होता ही है, पर बार बार जपने से, बार बार कमाई करने से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और वो मंत्र जो है वो साधक के ऊपर अवतरित होकर उस पर कृपा करने लग जाता है। ये जो हालत होती है, ये साध को अजपा जाप की तरफ ले जाती है। इसके प्राप्त हो जाने पर उपासक जो होता है, काल चक्र को भी तोड़ देता है उसकी गति भी धीरे धीरे ऊंची होती चली जाती है, वो अपना निस्तार अवश्य कर लेता है। ये दूसरी बात कही है कि नाम जपे, खूब जपे, जितना भी समय मिले उसका नाम जपे। फिर तीसरी बात कही है कि ऊपर के ही अवस्था को अगर किसी ने प्राप्त करना होवे और नाम की सिद्धि प्राप्त करनी होवे तो उसके लिए एक तो अपार प्रीति, बहुत प्रीति, जबरदस्त प्रीति चाहिए, अतुल श्रद्धा चाहिए, अनन्य भक्ति चाहिए और संशय रहित निश्चय होना चाहिए। तो ये अवस्था मनुष्य को बहुत शीघ्र मिल जाती है। जब तक आदमी में अपार प्रीति नहीं होती है, अतुल श्रद्धा नहीं होती है, अनन्य भक्ति नहीं होती है और संशय रहित विश्वास नहीं होता है, तब आदमी रास्ते में अटकता रहता है। ये ऊपर वाली अवस्था जो है, राम नाम के अधिक जप करने से, बहुत ज़्यादा जाप करने से ये अवस्था भी मनुष्य को आनी शुरू हो जाती है। अपनी जीवन की नौका को श्री राम के हवाले कर देना, उसके समर्पण कर देना, कंप्लीट परमेश्वर के हवाले अपने आप को कर देने से भी ये अवस्था आदमी को जल्दी प्राप्त हो जाती है। कोई कितना भी मंद भाग हो, किसी के रास्ते में कितनी भी रुकावटें आई हुई हों, कुछ दिन एकांत में रह के मौन धारण करके नाम आराधन करे और किसी प्रकार की मन में चिंता नहीं रखे, करता चला जाए, मौन रह के कुछ देर करे, कितना भी बदकिस्मत आदमी हो उसके अंदर भी नाम का नाद भी, अनाहत अवस्था भी, मस्ती भी, मिठास भी, वो उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। श्री राम कृपा जो है ये असीम सागर हैं, वे अपने नाम जपने वाले को एक ना एक दिन अवश्य संभाल लेते हैं। वो कितना भी भूले, कितना भी भटके, कितना भी गिरे, कितनी भी ठोकर खाए, पर परमेश्वर उसे भूले भटके को भी बचाकर उसका पथ प्रदर्शन आप करने लग जाते हैं।
ਚੋਰ।